एक चीज़ जो आम तौर पे बसा अवकात जो डिप्रेशन के शिकार लोग होते हैं, ये बहुत ही जहनी तनाव में रहते हैं, वो ये जब उनको बताया जाए कि ये कायनात तो एक इम्तिहान है, आप सब्र कीजिए और आप इस दुनिया की ज़िंदगी को हतमी ज़िंदगी ना समझें, ज़िंदगी का इब्तदाई हिस्सा है, तो एक सवाल वो ये करते हैं कि इम्तिहान तो चलें सबका हो रहा है, हमारा भी हो जाता, लेकिन कुछ बड़े हादसात, ऐसे ट्रेजिक वाकयात बचपन में पेश आ जाते हैं। मसलन आप गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, कहीं हादसा हुआ, पूरा ख़ानदानी उसमें रुख्सत हो गया, या इसी तरीके से कहीं पर आप देखते हैं कि एक बड़ी आसूदा हाल ज़िंदगी का आगाज़ किया और फिर सड़क पर आ गए, तो वो लोग ये पूछते हैं कि भाई इम्तिहान तो दुनिया भर में सबका हो रहा है, हमारा भी हो जाता, लेकिन ये हमारे साथ जो मामला हुआ है, ये तो कोई इम्तिहान की किसी इसकी को कल सीधी नहीं बैठती। तो इस तरह के लोगों को फिर कैसे हम तसल्ली दें कि जी इम्तिहान है ये?
जिस वक्त ऐसा वाकया हो जाता है या इस तरह के किसी हादसे से कोई आदमी दो चार हो जाता है, तो फिर आपकी तसल्ली और उसकी तसल्ली दोनों बेमानी हो जाती हैं। असल चीज़ ये है कि ये सब एहसासात पहले से आपके शऊर का हिस्सा हो।
हाँ हाँ अच्छा, अच्छा।
अगर आपने लोगों की तरबियत इस तरीके से की है, एक शख्स ने कभी ज़िंदगी पर सोचा ही नहीं, कभी खुदा उसके लिए एक जिंदा हकीकत बनाई नहीं, कभी उसकी सच्ची मार्फत उसका मौजू ही नहीं बनी, कभी उसने इस कायनात की हकीकत को समझा ही नहीं, ये दुनिया की ज़िंदगी क्या है ये उसके सामने कभी आई नहीं, उसकी 18 20 30 साल की ज़िंदगी इसी में गुजरी है कि दुनिया असल है, इसी को उसने पाना है, इसमें जद्दोजहद करनी है, इसमें फलां की कामयाबी ये है, फलां की कामयाबी ये है, अगर वो इसमें जीता है तो अब जब ये हादसा हो जाएगा तो इस वक्त आपके तसल्ली के कलेमात क्या करेंगे। ये जो बात मैंने अर्ज की, इसीलिए दूसरे पहलू से आपको बताई कि ये महज उस वक्त बताने की चीज़ नहीं है, ये इंसानी शऊर का हिस्सा बनाने की चीज़ है। जब ये हिस्सा बनेगा तो वो आपके पास आएगा ही क्यों, तसल्ली के दो कलिमात सुनने के लिए। उसकी तसल्ली के लिए उसके अंदर वो सब कुछ मौजूद है, वो अपने बातिन की तरफ रुजू करेगा ऐसे मौक़ों के ऊपर, और फिर उसको ये बड़ी हकीर चीज़ें नज़र आएंगी, ये सारा ख़ानदान, ये सारी दौलत, ये सारा इक्तदार, ये सारे ख़द्म व हशम बिल्कुल बेमानी हो जाएंगे। लेकिन उस वक्त जब ये चीज़ें पहले से उसका शऊर का हिस्सा है, जब उसके शऊर का हिस्सा ये चीज़ें नहीं बनी, उसने इनको गोया अपने साथ जीने बसने का मसला नहीं बनाया, वो जिसको कहते हैं ना कि आखिरत उसके लिए दुनिया से ज़्यादा हकीकी नहीं बन गई और खुदा उससे दुनिया के सारे रिश्तों से बढ़कर एक रिश्ते में नहीं आ गया, तो ये चीज़ कोई एक दिन में हो जाती है, ये तसल्ली के दो बोलों से हो जाती है, ये किसी मजलिस में शरीक होने से हो जाती है, ये एक पायदार शऊर है जो आपके अंदर नशोनुमा पाता है। तो ये शऊर जो है ये असल में मुंतकिल करने की ज़रूरत है। तालीम क्या है? तालीम सिर्फ कुछ फ़नून सिखाने का नाम नहीं, हुनरबंद बना देने का नाम नहीं, वो दुनिया की ज़रूरतें हैं, वो सीखने हैं और बनना है, लेकिन असल तालीम क्या है कि इंसान को उसकी हकीकत से आगाह कर दिया जाए।
ठीक।
और ये हकीकत अगर वही है जो मैंने आपसे अर्ज की, तो फिर शायद दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ जो इंसान को पढ़ाई जानी चाहिए वो मज़हब है। इसलिए कि दुनिया के मसले के बारे में अगर इज़ान के साथ कोई गुफ्तगू कर रहा है तो अल्लाह की पैगम्बरी कर रहे हैं, वही ये बता रहे हैं कि दुनिया क्या है, वही इस गुत्थी को सुलझा रहे हैं कि तुम कहाँ से आए हो, वही मेरे बातिन और मेरे हाजिर के दरम्यान हम आंगी पैदा कर रहे हैं, वही मेरी मंजिल के से मुझे बाखबर कर रहे हैं और वही मुझे नवीद सुना रहे हैं कि आगे एक ऐशे दमाम तुम्हारा मुंतजर है। तो ये सारी चीज़ें बतदरीज मेरे शऊर का हिस्सा बननी चाहिए। अगर ये बनेंगी तो मज़हब किरदार अदा करेगा, अगर नहीं बनेंगी तो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, तसल्ली के ये कलमात बिलमूम बेमानी हो जाएंगे। अच्छा, कोई आदमी उस मौके पर अगर तसल्ली हासिल भी कर लेगा तो वो ये कहेगा अच्छा मुझे को वजीफा बता दीजिए, अच्छा मुझे को आयत बता दीजिए, मैं उसको पढ़ना शुरू कर देता हूँ। वो चीज़ें भी असल में उसी तरह का नफसियाती इलाज तो बन सकती हैं,
शऊर का,
लेकिन वो शऊर का हिस्सा ना बनी होती हैं ना बन सकती हैं। इसलिए मैंने आपको तवज्जो दिलाई कि ये मज़हब का असलन मौजू नहीं है, मज़हब अपनी ज़ात में जब इंसान के शऊर का हिस्सा बनता है तो ये चीज़ें बेमानी हो जाती हैं जिनको हम तकलीफ़ें और मुसीबतें कहते हैं। ये मतलब नहीं कि वो अपना असर छोड़ देती हैं, नहीं, इंसानी जहन और इंसानी इरादा उनको दूसरे जाविये से देखना शुरू कर देता है।
ठीक। अच्छा हम सर, जो आपने भी बात फरमाई कि वो जो लाइफ की ओरिएंटेशन है वो तब्दील हो जाती है अगर ये मजहबी मुकदमात इंसान की फ़िक्र का शऊरी हिस्सा बने और याद दहानी रहे, मैं एक अमली मिसाल आपके सामने रखता हूँ और उसमें मुझे आप बताइएगा कि इतना बड़ा इम्तिहान अल्लाह ताला लेते हैं, बसा औकात हम ये देखते हैं कि घरों में जो बच्चे पैदा होते हैं वो माजूर हो जाते हैं या ऑटिज़म का शिकार हो जाते हैं या डाउन सिंड्रोम का शिकार। अब एक माँ जिसने एक बच्चे को 9 महीने पेट में पाला हो, उसकी गोद में जब ये खबर लेके आई जाए कि जी ये बच्चा तो अब पूरी जिंदगी मसलन माजूर रहेगा और आपने इसकी परवरिश निगरानी परदाख्त और इसका सारे मामलात संभालने हैं, तो अब आपकी ये पूरी ओरिएंटेशन भी अगर आदमी जहन में रखे तो अब तो माँ बाप ने अपनी जिंदगी उसके लिए खास कर देनी है, तो अब टेंशन वसाइल ये सब कुछ तो होगा, तो वो मजहब क्या मुझे नया जाविया देगा जिससे मैं उस बच्चे के साथ पूरी जिंदगी मामला करूंगा?
नहीं देखिए, ये तो होना है, ये हो गया, ये आप मजहबी ना होते तब भी होना था, आप किसी दुनिया के खित्ते में पैदा हो जाए तब भी होना था। मैं यहाँ अमरीका में बहुत से घरों में देखता हूँ इस तरह के बच्चे मौजूद हैं, माजूर भी हैं, और ये सारी चीज़ें जो आपने बयान किया वो भी उनको लायक होती हैं, ये तो होना था। असल में जो सवाल आपने किया था वो ये था कि दुनिया के अंदर ये हकायक हैं, ये मेरे मजहबी होने ना होने से तब्दील नहीं हो जाने, असल चीज़ ये है कि इनका मुकाबला करते हुए मुझे अंदर से कैसा होना चाहिए, वो ताकत मुझे मिल जाती है, यानी तकलीफ तो खत्म नहीं हो जाती, ताकत मिलती है।
अच्छा।
वो ताकत मेरा इरादा बनती है, मेरा शऊर बनती है, मेरे इकदामात का जरिया बनती है, और उसके बाद फिर आप देखते हैं दुनिया के अंदर कि जो लोग इस शऊर के साथ मजहब से वाबस्ता होते हैं उनके लिए ये तकलीफें और मुसीबतें ज्यादा शुक्र का जरिया बन जाती है।
अच्छा।
तो इंसान के अंदर इतनी बड़ी तब्दीली इससे आती है कि आप हैरान रह जाते हैं देख के उसको, बल्कि बाज लोगों की बातें सुन के आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। मुझसे एक डॉक्टर साहब ने यह कहा कि मेरा बच्चा माजूर है और मैं बरसों से उसको इसी तरह परवरिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ यही तो खुदा की रहमत मेरे पास आ गई है।
अच्छा।
क्योंकि ये हर वक्त मुझे खुदा याद दिलाता है, हर वक्त खुदा की तरफ मुझे मतवज्जे रखता है, इसके ज़रिए से अल्लाह की नेमतें मुझे मिलती हैं, मैं इसकी खिदमत करता हूँ तो मुझे मालूम होता है कि मेरे ऊपर अल्लाह की और इनायतें होनी शुरू हो गई हैं। तो देखने का जाविया बहुत बड़ी चीज़ है, इंसान सिर्फ एक मादी वजूद नहीं है, वो अपनी ज़ात में जज्बात रखता है, एहसासात रखता है, इरादा रखता है, उस इरादे के साथ अपनी ज़िंदगी के मंसूबे बनाते हैं। आप अगर गौर करके देखें तो दवा भी असरअंदाज नहीं होती उस वक्त तक जब तक कि मरीज़ के अंदर मर्ज़ के साथ नवरदाजमा होने की ताकत ना हो। तो ये ताकत आपको क्या चीज़ देती है? ये आपका इरादा, आपका शऊर, आपके एहसासात, आपका वर्ल्ड व्यू देता है। ये चीज़ है जो आपके लिए बनती है। इसके हरगिज़ ये मानी नहीं है कि ये कोई गोली है आपने खा ली तो सर दर्द दूर हो जाएगा, तकलीफ रहती है, मुसीबत आती है, उससे इंसान गुजरता है, लेकिन जो ताकत उसको मैसर आती है इससे, वो बहरहाल इसी से मैसर आती है, दुनिया की और चीज़ ये ताकत दे नहीं सकती। और अगर वो इस ताकत को लेना नहीं चाहता तो तब भी उसने बहरहाल इससे गुजरना ही है। क्या फिर ये करेगा कि उसका इलाज ये है कि उठा के कहीं बैर अरब में फेंक आएगा? यानी इंसानी शऊर इसको तो कभी भी गवारा नहीं करेगा ना। तो अगर गवारा नहीं करेगा तो जो तकलीफ आपको आ गई है, बीमारी आ गई है तो काटनी है, तकलीफ आ गई है तो उससे गुजरना है, मईशत की तंगी है तो बहरहाल उसका मुकाबला करना है। तो आपने जो कुछ दुनिया में करना है उससे तो आपको कोई नहीं रोक रहा, वो करें, लेकिन जो बड़ी ताकत आपको मैसर आती है वो आपके शौरी एहसास से आती है।
ठीक है, हम सब बहुत आपने अच्छा एक जाविया दिया कि किस जाविये से हम देखें। आगे बढ़ाते हैं सवालात के सिलसिले को। ये सवाल अभी आपने जिक्र किया खानकाह के इदारे का, सवाल ये पूछा गया है कि आज की जो जिंदगी है एक बिजनेस मैन की, एक वर्किंग मैन या वुमेन की, एक स्टूडेंट की, उसमें तो लाइफ का जो स्पैन है वो इतना बिजी स्केड्यूल है कि जिसमें आपने 9 to 5 दफ्तर जाना है, ग्रॉसरीज करनी है, बच्चों की तालीम तरबियत, उसमें ये मौका नहीं मिलता कि आदमी गौर करे, बैठे अपने जहन पर, अपने आप पर, खुदा से अपने रिश्ते और ताल्लुक पर। आपने भी जिक्र किया था खानकाह के इदारे का, ये मॉडर्न जो लाइफ स्टाइल है इसके अंदर मसलन इस तरह के इदारे कैसे कोई रोल प्ले कर सकते हैं और इसकी अमली सूरत क्या हो सकती है?
इस वक्त जो आप जिसको तरक्की याफ्ता दुनिया कहते हैं और जिसमें ये कहा जाता है कि इंसान के लिए बहुत कुछ अच्छी तंजीम माशरे की सतह पर फराहम की गई है, उसमें देखिए कि लोगों के आम मामलात क्या हैं। अब अगर आप गौर करके देखें तो आपको तरक्की याफ्ता ममालिक में बिलअमूम काम के अवकात वो मिलेंगे जो हकीकत में दिन के अवकात हैं
जी।
कम किसी जगह ऐसा होगा कि आप 12 बजे दुकान खोल रहे हैं या दफ्तर 12 बजे जा रहे हैं। यानी आम तौर पर आप ये देखते हैं कि वही 8 बजे 9 बजे के अवकात है, उसी से ज़िंदगी शुरू होती है। उसके बाद शाम के अवकात में देर तक जागने का उस तरह का तसव्वुर आपको नहीं मिलेगा जिस तरह हम अपने मुल्क में या अपनी कौम में देखते हैं। लोग मगरिब के बाद बिस्तर में जा रहे होते हैं या अगर कहीं थोड़ी बहुत तफरी करनी है तो उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 घंटे के बाद बत्तियां बुझना शुरू हो जाती हैं, रास्ते वीरान होना शुरू हो जाते हैं। उस तरह की मजालिस आपको नहीं नजर आती जिस तरह हम अपने यहाँ देखते हैं। अच्छा, फिर 2 दिन की छुट्टी जिसमें क्या होता है, عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ باہر نکل جاتے ہیں, وہ فطرت کی آغوش میں جا کے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے اعزاء اقربا سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ اصل میں زندگی کو اس طریقے سے منظم کرنا ہے کہ زندگی کے سارے لوازم اور تقاضے اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں. ہم بعض اوقات کیا کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں کہ اپنی پوری زندگی کا نظم برباد کر لیتے ہیں.
ٹھیک ٹھیک.
نہ اٹھنے کا وقت, نہ سونے کا وقت, نہ کوئی کام کرنے کا وقت, اور نہ تفریح کے مواقع. آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ رہے ہوتے ہیں اور وہ ساری زندگی پس انداز کرتے ہیں ان ممالک میں کہ اب انہیں سفر کے لیے نکل جانا ہے. یہاں جائیں گے, وہاں جائیں گے, یہاں ٹھہرے, وہاں ٹھہرے. عام طور پر بوڑھے لوگ ہوتے ہیں, یعنی ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہوئی, میاں بیوی ہیں, ایک بیگ ڈالا ہوا ہے اور پھر رہے ہیں, دنیا کو دیکھ رہے ہیں. تو زندگی کی ایک تنظیم ہونی چاہیے. مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ اپنا لیں. ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں لوگ ویسے تو بہت تقلید کرتے ہیں ان ممالک کی, لیکن یہ اچھی باتیں اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کہ ہم اپنے کاروبار کے اوقات کو منظم کریں, اٹھنے کے اوقات کو منظم کریں, سونے کے اوقات کو منظم کریں. بہت سی تکلیفیں, بہت سی بیماریاں, بہت سے معاملات ہماری غیر منظم زندگی کی وجہ سے ہمارے وجود کے لیے ایک ناسور بن جاتی ہے.
جی,
آپ غور کر کے دیکھیں کہ جو یہ لفظ استعمال کیا قرآن مجید میں, تقویٰ کیا چیز ہے یہ؟ یعنی تقویٰ اصل میں اگر آپ سادہ لفظوں میں اس کو ٹرانسلیٹ کر دیں, ایک تو اس کا مذہبی پہلو ہے نا.
جی,
یعنی آپ اللہ تعالیٰ سے اندیشہ ناک ہوتے ہیں, آپ اللہ کی گرفت سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے نتیجے میں آپ کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے. لیکن اپنی ذات میں تقویٰ کیا ہے, یعنی وہ نتیجے میں پیدا ہو یا آپ اس کو شعور کے ساتھ اختیار کریں, وہ ہے کیا؟ وہ اصل میں اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا ہے. انسانی زندگی کے اندر سب سے بڑی چیز جس کو پہلے مرحلے میں ہدف بننا چاہیے, جس کی تعلیم دینی چاہیے, وہ یہی ڈسپلن کرنے کا عمل ہے. یہ اگر آپ کر لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پھر اس طرح کی جتنی بھی چیزیں یا کاوشیں ہیں وہ بھی مؤثر ہوتی ہیں, اور اچھے ادارے بھی اگر وجود میں آ جائیں کہ جو لوگوں کو نکال لیں. میں نے خانقاہ کا ذکر اس پہلو سے کیا تھا کہ اگر ایسے ادارے موجود ہوں کہ جس طریقے سے لوگ تفریح کے لیے چلے جاتے ہیں, دو دن چار دن کے لیے اپنے گھروں سے غائب ہو جاتے ہیں, وہ ایسی جگہوں پر چلے جائیں. اور یہ جگہیں بھی یہ نہیں کہ کوئی بڑا بار ان کے اوپر ڈال دیں, نہیں, ایسا ماحول میسر کریں جس میں وہ فطرت کی آغوش میں رہیں. اس کائنات کو دیکھیں, اس کے اندر خدا کی قدرت کی کرشمہ سازیوں کو دیکھیں, اور کچھ اچھی باتیں سنیں, حقیقت کو ذرا اپنی نگاہوں کے سامنے ممثل ہوتے دیکھیں, اور وہ زندگی بسر کریں کہ جو عام حالات میں ہم کو میسر نہیں آتی. تو یہ چیز بھی اسی طرح سوسائٹی کی, تمدن کی, معاشرے کی ضرورت ہے جس طرح سے مدرسہ اس کی ضرورت ہے, تفریح کے مواقع اس کی ضرورت ہے. یہ ساری چیزیں اسی طرح ہیں. اگر آپ یہ میسر نہیں کرتے اور توازن کے ساتھ میسر نہیں کرتے, تو پھر تفریح جو بالکل ایک جائز چیز ہے وہ اپنے حدود سے آگے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے, اور بعض اوقات وہ ایسے انحرافات کی شکل اختیار کر لیتی ہے کہ سوسائٹی کے اندر جرائم پیشگی کو فروغ ملتا ہے. تو یہ توازن انسانی زندگی میں پہلے دن سے پیدا کرنا ضروری ہے. ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں جرائم کی سزائیں دی جائیں, یہ کیا جائے, وہ کیا جائے. جرائم کی سزائیں تو بہت بات کا مسئلہ ہے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی سوسائٹی کو تفریح کے مواقع کتنے فراہم کیے ہیں, آرام کی زندگی کے لیے آپ کے اندر کتنا تردد ہے, لوگوں کی معیشت کی بحالی کے لیے آپ کتنا سوچتے ہیں, اور یہ کتنا سوچتے ہیں کہ لوگوں کے اندر ایک ذہن ہے, ان کے اندر ایک جذبہ ہے, ان کے اندر ایک شعور ہے, آپ نے اس کی تعمیر کے لیے کیا کام کیا ہے, کیا ادارے بنائے ہیں اس کے لیے. تو کسی اچھی سوسائٹی کے اندر ساری توجہات کا مرکز یہ ہونا چاہیے, یعنی آپ کے گرد و پیش کا ماحول کیا ہے, آپ کے اپنے ڈسپلن کا کیا حال ہے, آپ جہاں کاروبار کرنے کے لیے جاتے ہیں وہاں آپ کو کیا ماحول میسر ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں انسان کے اوپر بے پناہ اثر انداز ہوتی ہیں, اور اگر آپ ان کے معاملے میں اس کو قوت فراہم کر دیں تو یہ بالکل صحیح ہے کہ دنیا کی زندگی میں بعض اوقات ناقابل بیان تکلیفیں آ جاتی ہیں. انسان ان تکلیفوں کو اس طرح دور تو نہیں کر سکتا کہ نہ آنے دے, یہ اس کے بس میں نہیں ہے, لیکن جدوجہد تو کر سکتا ہے نا کہ ان سے وہ بچنے کے لیے اندرونی طاقت بھی استعمال کرے. بیرونی طاقت تو یہ ہے نا کہ آپ نے کوئی پریونٹیو میئرز لے لیے, آپ نے کوئی دوا لے لی, آپ نے کوئی خاص اہتمام کر لیا, آپ نے کچھ بچت کر کے رکھ لی تاکہ اس طرح کے معاملے میں آپ بے بس نہ ہو جائیں. یہ وہ ہیں جو چیزیں آپ نے کرنی ہیں دنیا میں, لیکن اصل چیز آپ کے اندر موجود ہے, تو اس کے لیے بھی اہتمام ہونا چاہیے.